चिन्मुखी मानवता के अन्वेषक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक व्यक्तित्व बहुआयामी है। वे जन चेतना की दृष्टि से साहित्य इतिहास के शोधकर्ता एवं व्याख्याता, मर्मी विचारक, उपन्यासकार, ललित निबंधकार, संपादक तथा एक बहुअतीत अधीत एवं बहुश्रुत आचार्य के रूप में मान्य हैं। उन्हें एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न या मानवतावादी समाजशास्त्रीय दृष्टि संयुक्त समीक्षक का गौरव भी प्राप्त है, किंतु उनके इस समीक्षक व्यक्तित्व के सामने कुछ मान्य आलोचकों ने प्रश्न का चिन्ह लगाकर उसे विवादास्पद बना दिया है। पंडित नंदुलारे वाजपेयी का कथन है, हमें यह देखकर प्रसन्नता होती है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जैसे नए शोधकर्ताओं ने साहित्य समीक्षा तथा शोध कार्य का अंतर समझकर दोनों के बीच चक्कर लगाने की आदत छोड़ दी है। जाहिर है कि वाजपेयी जी साहित्य समीक्षक से जो अपेक्षा करते हैं उसकी पूर्ति द्विवेदी जी की समीक्षात्मक कृतियां नहीं कर सकी हैं। यहाँ यह आवश्यक हो जाता है कि हम द्विवेदी जी के समीक्षक व्यक्तित्व का विश्लेषण करें और यह देखें कि सच्चाई क्या है। समीक्षक का दायित्व तो क्या है? शोधकर्ता और समीक्षक, आचार्य और समीक्षक या अध्यापक और समीक्षक के व्यक्तित्व कहीं किसी एक बिंदु पर मिलते हैं या नहीं? साहित्य के प्रति उनके दृष्टिकोण में कहीं कोई समानता होती है या नहीं? एक सच्चे भावक या मर्मी के रूप में समीक्षक कृति की व्याख्या करते हुए एक आदर्श समीक्षक को इतिहास, परंपरा, समाज दर्शन, मनोविज्ञान आदि काव्येतर तत्वों और आचार्यों द्वारा स्वीकृत काव्य सिद्धांतों के ज्ञान की आवश्यकता होती है या नहीं? आचार्य द्विवेदी के आलोचक व्यक्तित्व की मीमांसा करते हुए इन सभी प्रश्नों पर विचार करना आवश्यक है। समीक्षक या आलोचक भारतीय काव्यशास्त्र के लिए नया शब्द है। भारतीय काव्यशास्त्र में प्राचीन काव्य सिद्धांतों की व्याख्या और नए सिद्धांतों की स्थापना करने वाले आचार्यों और काव्य का आस्वादन करने वाले सहृदयों या साहित्य रसिकों की स्थिति मान्य है। आज का समीक्षक या आलोचक इन दोनों के दायित्वों का निर्वाह करने का दावा कर सकता है। आलोचक और आलोचना, ये दोनों ही शब्द अंग्रेजी के क्रिटिक और क्रिटिसिज्म के हिंदी अनुवाद हैं। स्वयं अंग्रेजी साहित्य में क्रिटिसिज्म के स्वरूप और प्रकृति का निर्धारण आज तक नहीं हो सका है। आलोचना मूल्यांकन की कला है। आलोच्य कृति की व्याख्या है। कृति के वैयक्तिक प्रभावों का प्रस्तुतिकरण है। विश्वमान्य काव्य सौंदर्य के प्रतिमानों के संदर्भ में कृति में निहित काव्य सौंदर्य का उद्घाटन है। रचना के माध्यम से कवि के मनोजगत में विद्यमान मर्म बिंदु की खोज है। रचना के संपूर्ण अर्थ तक पहुंचने का साधन है। रचनाकार के अनुभवों में सांस लेते हुए सृजन की उसी प्रक्रिया से गुजरना है जिससे गुजरकर रचनाकार ने कृति विशेष की सृष्टि की है। रचना के निहितार्थ तक पाठक को ले जाने के लिए निर्मित हेतु है। इन उक्तियों के द्वारा विचारकों ने अपनी अपनी दृष्टि से आलोचना की प्रकृति का निर्धारण करना चाहा है, किंतु आज तक न तो श्रेष्ठ रचना के लिए कोई शाश्वत प्रतिमान निर्दिष्ट किया जा सका है और न पूर्ण और आदर्श आलोचना की प्रकृति को ही रेखांकित किया जा सका है। शोध और समीक्षा दोनों के क्षेत्र सामान्यतः अलग हो सकते हैं, किंतु दोनों क्रियाएं एक दूसरे से सर्वथा निरपेक्ष नहीं है। शोध से हमारे ज्ञान के क्षितिज का विस्तार होता है और हमारी दृष्टि व्यापक होती है। दृष्टि की व्यापकता समीक्षा के वृत्त का भी विस्तार करती है। साहित्यिक शोध के प्रति एकांत समर्पण साहित्य के गहरे लगाव से ही संभव है। प्रत्येक समर्पित शोधकर्ता अच्छा समीक्षक चाहे न हो, किंतु अच्छा समीक्षक समर्पित शोधकर्ता हो सकता है। शोध केवल तथ्यात्मक हो या आवश्यक नहीं। तत्व का शोध अधिक मूल्यवान होता है। उपलब्ध तथ्य का नए संदर्भ में नई दृष्टि से पुनराख्यान करना शोध भी है और समीक्षा भी। कृति विशेष में निहित भाव सौंदर्य की व्याख्या, उससे पूर्व रचित उसी परंपरा की कृतियों में उपलब्ध भाव सौंदर्य के आलोक में करना और दोनों के उत्कर्षापकर्ष के संबंध में निर्णय देना समीक्षक का दायित्व तो है। तुलनात्मक आलोचना के दौर में तो ऐसा हुआ ही है। आज भी निराला के राम की शक्ति पूजा का मूल्यांकन वाल्मीकि रामायण, देवी भागवत और कृत्तिवास के बंगला रामायण के संदर्भ में किया जा रहा है। इस प्रकार के मूल्यांकन में शोध समीक्षा की दृष्टियां एक दूसरे से मिलकर संश्लिष्ट हो गई हैं। आचार्य और समीक्षक के कर्म वृत्त भी किसी एक ही केंद्र से जुड़े हैं। आचार्य लक्ष्य ग्रंथों के मार्मिक स्थलों के सौष्ठव का आधार निर्णय करके ही लक्षणों का निर्धारण करता है। लक्ष्य ग्रंथों का लक्ष्य और स्वरूप जीवन की गतिशील धारा के साथ जुड़ा होने के कारण परिवर्तित होता रहता है। जब तक आचार्य रचना के साथ परिवर्तित नवीन सौष्ठव आधार के अनुसंधान में रत रहकर पूर्व निर्धारित रचना का लक्षणों का संस्कार करता चलता है, तब तक वह एक आलोचक के दायित्व से जुड़ा रहता है। वह अलग तब पड़ जाता है जब पूर्व निर्धारित लक्षणों को ही प्रमाणिक मानकर नवीन रचना के सौष्ठव को आग्रहपूर्वक अस्वीकार कर देता है। यही स्थिति अध्यापक की भी है। जब तक वह रचना की नव्यता के साथ अपनी रुचि का संस्कार करता चलता है, तब तक उसके निर्णय रूढ़ नहीं होते। वह नई रचना के प्रति जिज्ञासा का भाव रखता है, रचना को सार्थक बनाने वाले नवीन उपादानों को जानने और समझने की चेष्टा करता है। किंतु जब वह समीक्षा की किसी परंपरागत पद्धति को ही अंतिम मानकर उसे निकष पर नवीन संवेदना से युक्त रचनाओं को भी देखना चाहता है, तब समीक्षक के दायित्व से अलग पड़ जाता है। अध्यापक भी रचना के मर्म बिंदु का ही अन्वेषण और विश्लेषण करता है। समीक्षक से अलग उसकी पहचान इसलिए की जाती है कि प्रायः वह अन्य समीक्षकों के मत और निर्णयों को स्वीकार करता हुआ एक विशेष वर्ग के पाठक के लिए उपयोगी और निर्णित सामग्री प्रस्तुत करने की नियति से जुड़ा रहता है। आलोचना की पूर्व परिचित सरणी उसके लिए सुविधाजनक होती है। प्रत्येक नई रचना को चुनौती मानकर उसके मर्म को परखने और उसके साथ अपनी काव्य संवेदना को निरंतर मार्जित करते रहने का जोखिम वह नहीं उठाना चाहता है। तात्पर्य यह है, शोधकर्ता, आचार्य, अध्यापक और आलोचक अपनी अलग अलग पहचान कायम रखते हुए भी किसी एक बिंदु पर जुड़ते अवश्य हैं। इसलिए हम आलोचना के क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त किसी साहित्यकार में शोध की प्रवृत्ति का विकास देखकर उसे सहसा उस क्षेत्र से बहिष्कृत नहीं कर सकते। हमें उसकी कृतियों में प्राप्त शोध की ऊपरी परतों के भीतर उसके आलोचक व्यक्तित्व की पहचान करनी चाहिए। इस दृष्टि से आचार्य द्विवेदी की कृतियों का अवलोकन उनके समीक्षक व्यक्तित्व को समझने में हमारी सहायता कर सकता है। सूर साहित्य द्विवेदी जी की प्रथम रचना है। यह प्रथम बार सन 1930 के आसपास प्रकाशित हुई थी। दूसरी बार मुद्रित होने पर द्विवेदी जी ने इसके संबंध में लिखा है, सूर साहित्य मेरी पहली रचना है। आज से कोई 25 वर्ष पहले यह पुस्तक लिखी गई थी। उस समय साहित्य के क्षेत्र में कुछ नया देने की उमंग थी और ऐसा विश्वास था कि जो कुछ लिख रहा हूँ सब प्रकार से नवीन और ग्राह्य है। इसीलिए भाषा में जहाँ एक प्रकार का आत्मविश्वास का गुण था, वहीं थोड़ा बहुत आक्रामक भाव भी आ गया था। आज यदि नए सिरे से इसी विषय पर लिखना पड़े तो इसकी भाषा और शैली में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा और यह पुस्तक कदाचित उपयोगी तो अधिक हो जाएगी, लेकिन इसमें जो थोड़ी सी भास्वरता है वह क्षीण हो जाएगी। द्विवेदी जी ने अपनी उपयुक्त रचना के संदर्भ में तीन विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला, कुछ नया देने की उमंग। दूसरा, आत्मविश्वास और आक्रामक भाव। और तीसरा, भास्वरता। कहना न होगा कि किसी कृति में ये गुण उसे नीरस तथ्यपरक शोध से अलग रचनाधर्मी समीक्षा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए पर्याप्त है। इस रचना के प्रथम दो अध्याय राधा कृष्ण का विकास, स्त्री पूजा और उसका वैष्णव रूप निश्चित रूप से सूचना प्रधान और शोधपरक है। प्रथम अध्याय में द्विवेदी जी ने तथ्याधार प्रस्तुत करते हुए बेवर, ग्रियर्सन, कैनेडी और भंडारकर जैसे विद्वानों के इस मत का खंडन किया है कि बालकृष्ण की कथा ईसा मसीह की कथा का भारतीय रूप है। दूसरे अध्याय में उन्होंने तन्मतवाद के उद्भव का कारण, उसमें स्त्री का महत्व तथा वैष्णव मत का उससे पार्थक्य दिखाया है। शोधपरक होने पर भी ये दोनों अध्याय सूरदास के कृष्ण और राधा को समझने के लिए आवश्यक है। इस रचना में द्विवेदी जी ने प्रेम तत्व की जो व्याख्या की है और जयदेव विद्यावदिता चंडीदास की राधा के साथ सूर्य की राधा के प्रेम का जो सूक्ष्म पार्थक्य दिखाया है, वह उनके समीक्षक रूप को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है। इसके पूर्व आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ब्रह्मगीत सार प्रकाशित हो चुका था, किंतु उसमें सूर्य की राधा को न तो जयदेव विद्यापति चंडीदास की राधा के साथ रखकर देखा गया था, न उसके गंभीर और पूर्ण प्रेम की व्याख्या की गई थी। नंदी साहित्य की भूमिका के प्रकाशन के साथ द्विवेदी जी के साहित्यिक व्यक्तित्व को व्यापक स्वीकृति मिली। निश्चय ही यह स्वीकार उनके आलोचक रूप के महत्व का स्वीकार नहीं था, यह स्वीकार उनकी इतिहास दृष्टि का था। हिंदी साहित्य की भूमिका के माध्यम से द्विवेदी जी ने मुख्यतः चार बातों पर बल दिया। पहला, हिंदी साहित्य को संपूर्ण भारतीय समाज साहित्य से संबद्ध करके देखा जाए। दूसरा, हिंदी साहित्य के माध्यम से व्यक्त चिंतन चिंताधारा को भारतीय चिंता के स्वाभाविक विकास के रूप में स्वीकार किया जाए। तीसरा, हिंदी साहित्य को ठीक से समझने के लिए मात्र हिंदी ग्रंथों पर निर्भर न रहकर जैन और बौद्ध और ब्रह्म साहित्य, कश्मीर के शैवों तथा दक्षिण के और पूर्व के तांत्रिकों का साहित्य, नाथ योगियों का साहित्य, वैष्णवागम, पुराण, निबंध ग्रंथ तथा अलौकिक कथा साहित्य, यह सब कुछ देखा परखा जाए। और चौथा, साहित्य के इतिहास को जनचेतना के इतिहास रूप में व्याख्यायित किया जाए। उन्होंने इसी दृष्टि से हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी भी थी, इसीलिए उन्होंने इसके परिशिष्ट में संस्कृत साहित्य, महाभारत, रामायण, पुराण, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य आदि का भी परिचय दिया है। निश्चय ही हिंदी साहित्य की भूमिका में द्विवेदी जी का पांडित्य प्रकट है। उनका इतिहासकार अपनी पूरी शक्ति के साथ विद्यमान है, उनका आलोचक रूप दब गया है, किंतु इस कृति में भी उन्होंने भक्त कवियों के व्यक्तित्व का जो विश्लेषण किया है वह किसी भी मार्मी समीक्षक के लिए स्पृहा की वस्तु है। कबीर के संबंध में वे लिखते हैं, उनके प्रेम और भक्ति में वह गलदस्यु भावुकता नहीं थी जो जरा सी आंच से ही पिघल जाए। प्रेम ज्ञान द्वारा नीत और श्रद्धा द्वारा अनुगमित था। वियोग की बात भी वे उसी मौत से कह सकते थे जिस तरह संयोग की। उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला था वह ज्ञान के महुए और गुड़ से बनी थी, इसीलिए अंधश्रद्धा, भावुकता और हिस्टीरिक प्रेमोन्माद का उसमें एकांत अभाव था। भक्ति के अतिरिक्त उन्होंने कभी अपने को अति पतित नहीं समझा। सिर से पैर तक वे मस्त मौला थे, बेपरवाह, दृढ़, उग्र। एक वर्ष बाद में द्विवेदी जी की परम प्रसिद्ध पुस्तक कबीर प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के माध्यम से द्विवेदी जी का समीक्षक रूप उभर कर सामने आया। कहना न होगा कि आज भी कबीर की जो छवि हिंदी साहित्य में की नई पीढ़ी के पाठकों के मन में विद्यमान है, उसे द्विवेदी जी ने इसी पुस्तक के माध्यम से रूपायित किया है। द्विवेदी जी का पंडित और शोधक रूप यहाँ भी विद्यमान है, किंतु उनके समीक्षक रूप की भास्वरता संदेह से परे है। इस पुस्तक में जो सूचनाएं दी गई हैं उनमें विशेष नवीनता नहीं है। कबीर पर योगों से संबंध, उनकी योग परक उलटवासियों की व्याख्या और उनका मुख्य मूल उत्स कबीर की भक्ति, उनके द्वारा बाह्याचार का खंडन, इन सभी बातों की ओर पूर्ववर्ती विद्वानों ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया था। किंतु कबीर के प्रति जो सहानुभूति द्विवेदी जी के मन में है और जिस आकुंठ भाव से उन्होंने पूरे विश्वास, निष्ठा और शक्ति के साथ कबीर के महत्व को स्वीकारा और व्यक्तित्व को उभारा है वह अन्यतम है। उन्होंने कबीर और उसके संबद्ध साहित्य का मंथन करने के बाद जो निर्णय दिए हैं वे आज भी स्वरूप में मान्य हैं। द्विवेदी जी के निर्णय ध्यान देने योग्य हैं। पहला, हिंदी साहित्य के हजार वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। दूसरा, कबीर के वाणियों में अनन्य साधारण जीवन रस है, कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता। तीसरा, सादगी और सहज भाव पर निरंतर जोर देते रहना तथा बाह्य धर्माचारों की निर्मम आलोचना कबीर के सर्वाधिक लक्ष्य करने वाली विशेषताएं हैं। चौथा, वे मनुष्य मात्र को समान मर्यादा का अधिकारी मानते थे। पांचवा, कबीरदास का भक्त रूप ही उनका वास्तविक रूप है। छठा, कबीरदास एक जबरदस्त क्रांतिकारी पुरुष थे। सातवां, कबीरदास के पदों में जो महान प्रकाशपुंज है वे बौद्धिक आलोचना के विषय नहीं है। इसके बाद द्विवेदी जी की जो कृतियां प्रकाशित हुई उनमें हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी के आरंभिक साहित्य संबंधी उलझनों का समाधान प्रस्तुत करने वाला इतिहास ग्रंथ है। इसमें द्विवेदी जी की शोध दृष्टि प्रधान है, किंतु उनका रसग्राही मन सहयात्रिक रूप में बराबर विद्यमान रहा है। इसीलिए तथ्यानुसंधान के साथ साथ उसमें बीच बीच में विनोदपूर्ण कहानियां, भावपूर्ण छंद और कवित्वपूर्ण टिप्पणियां भी प्राप्त होती हैं। सहज साधना में सिद्धों, योगियों एवं संतों के साहित्य में लक्षित सहज साधना की व्याख्या प्रस्तुत की गई है। यह अनुशीलन परक रचना है, किंतु इस अनुशीलन की मूल प्रेरणा क्या है, स्वयं द्विवेदी जी के शब्दों में, आज मशीन केवल स्थूल रूप में हमारी सभ्यताओं को यंत्र चालित नहीं बना रही है। हमारे सामाजिक संगठन और बौद्धिक चेतना भी यांत्रिकता का रूप ग्रहण करते जा रहे हैं। इसका कारण केवल जड़ तत्व को प्रधानता देने वाली वृत्ति है। इसलिए संतों और भक्तों की वाणी का आज भी उपयोग है। वह मनुष्य पर मशीन के प्रभुत्व का प्रत्याख्यान करती है और इस बात पर जोर देती है कि जड़ोन्मुख यांत्रिकता नहीं बल्कि चिन्मुखी मानवता ही बड़ी चीज है। प्रकट है कि प्राचीन साहित्य में शोध मेरठ द्विवेदी जी मात्र जानकारी की वृद्धि या सूचना संग्रह नहीं कर रहे थे, वे चिन्मुखी मानवता को संगठित करने वाले तत्वों के अनुसंधान में लीन थे। यह तथ्य का शोध नहीं, तत्व की व्याख्या है। यह यांत्रिक निर्मिति नहीं, प्राणमय सृष्टि है। कालिदास की लालित्य योजना में कालिदास के माध्यम से भारतीय सौंदर्य दृष्टि की व्याख्या की गई है। इसमें यदि किसी प्रकार की शोध वृत्ति है तो वह सौंदर्य तत्व के शोध की है, इसलिए निश्चय रूप से एक उच्च कोटि की समीक्षा करती है। लेखक के शब्दों में भारतीय धर्म दर्शन शिल्प और साधना में जो कुछ उदात्त है, जो कुछ दृप्त है, जो कुछ महनीय है और जो कुछ ललित और मोहन है, उसका प्रयत्नपूर्वक सजाया संवारा रूप कालिदास का काव्य है। यह निर्णय भारतीय सौंदर्य चेतना का पारख ही दे सकता है, सामान्य तथ्यान्वेषी वैज्ञानिक अनुसंधाता नहीं। मध्यकालीन बोध का स्वरूप में 8वीं से 18वीं सदी तक के साहित्य का अनुशीलन करके इस अवधि में सहृदय के चित्त में होने वाले परिवर्तनों को लक्षित किया गया है। लेखक के अनुसार 8वीं शताब्दी तक वह विवेक पर किसी न किसी प्रकार जमा रहा, पर आगे चलकर वह विवेक के स्थान पर रूढ़ी का समर्थक हो गया। मध्यकाल के पूर्व गुप्त और नाव वाकाटकों के समृद्ध काल के साहित्य के संबंध में लेखक का कथन है, इस समृद्ध काल के साहित्य में शब्द की अपेक्षा अर्थ पर अधिक ध्यान दिया गया है, जीवन को उपभोग्य और ग्राह्य बनाने पर अधिक बल है, शब्द शक्तियों पर विचार अवश्य किया गया है पर बाल की खाल निकालने की प्रवृत्ति कम है। परवर्ती काल में शब्द प्रधान हो गया है, अर्थ क्रमशः सिमटता गया है, अर्थ से क्रमशः कटता हुआ शब्द स्तब्ध और प्रयोग विरहित शैथिल्य को ही जन्म दे सकता है। जाहिर है कि प्रस्तुत कृति ऊपर ऊपर से शोध परक भले प्रतीत होती हो, किंतु उसमें द्विवेदी जी की सूक्ष्म समीक्षा दृष्टि आद्योपांत विद्यमान है। इसी के चलते उन्होंने तत्कालीन साहित्य के मूल स्वर को पहचाना और उसमें निहित स्तब्ध एवं रूढ़ी जर्जर तथा विवेकशील एवं गद्यात्मक चेतना के अंतर को लक्षित किया है। शुद्ध तथ्यपरक शोध दृष्टि से लिखी गई द्विवेदी जी की कदाचित एक ही कृति नाथ संप्रदाय है। इसमें उन्होंने नाथ संप्रदाय के उद्भव विकास विस्तार प्रभाव और महत्व के संबंध में यथोचित जानकारी देने की चेष्टा की है, किंतु इस अध्ययन क्रम में भी वह यह बताना नहीं भूले कि लोक जीवन में जो धार्मिक चेतना पूर्ववर्ती सिद्धों से आकर उसके पारमार्थिक उद्देश्य से विमुख हो रही थी, उसे गोरखनाथ ने नई प्राण शक्ति से अनुप्राणित किया। तात्पर्य यह कि यहाँ भी उनका लक्ष्य लोक चेतना के प्रवाह का विश्लेषण ही है। उपर्युक्त कृतियों के अतिरिक्त द्विवेदी जी ने अपने अनेक छोटे बड़े निबंधों में अपने आलोचक व्यक्तित्व का परिचय उन मानवतावादी मूल्यों की घोषणा के साथ के माध्यम से दिया है, जिनके अभाव में वे किसी भी रचना की श्रेष्ठता स्वीकार नहीं करते हैं। साहित्य कामर में शीर्षक अपने लंबे निबंध में उन्होंने कहा है, सभ्यता और संस्कृतियों के इतिहास से यही तथ्य प्रकट होता है कि मनुष्य समस्त संस्कारों समस्त आरोपित मूल्यों और समस्त रीति रस्मों से बड़ा है। मनुष्यता के निरंतर प्रवाहमान धारा नाना मूलों से शक्ति संग्रह करती हुई आगे बढ़ती जा रही है। मनुष्य का इतिहास इन्हीं साधनाओं का इतिहास है। उसने आदिम कही जाने वाली मनोवृत्तियों के साथ अपने को नहीं जोड़ा, छोड़ दिया, प्रयोजन की संग्रहता को बीड़ियों से अपने को नहीं बंधने दिया, मृत्यु के नागपाश में अपने को नहीं फंसने दिया, सब कुछ को छोड़ कर न जाने किस विजय यात्रा के लिए निकल पड़ा है। इस सत्य को द्विवेदी जी ने अपने कई निबंधों में घुमा फिराकर बार बार दोहराया है। उन्होंने घोषित किया है कि मनुष्य के साहित्य का लक्ष्य है इसी मनुष्य सत्य को, मनुष्य की श्रेष्ठता को, चिन्मुखी मानवता को श्रेष्ठ साहित्य का प्रतिमान मानकर द्विवेदी जी सूर कबीर कालिदास और रविंद्र की कृतियों के मूल्यांकन में प्रवृत्त हुए हैं। उनके पास रचना की श्रेष्ठता का इतना बड़ा प्रतिमान है कि उससे वे एक साथ प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक कवियों का मूल्यांकन कर लेते हैं। उन्होंने इतिहास के जड़ तथ्यों की खोज में समय नहीं गवाया है, उनका सारा चिंतन मनुष्य सापेक्ष है।